खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यसु नासरी ही है जो बरकत देता है, क्योंकि वो बरकत का मंबा है। उसी से हर बरकत जारी होती है। इसीलिए खुदावंद का बंदा यकूब कहता है कि हर अच्छी बरकत और नेहमत नूरों के बाप की तरफ से है जो ऊपर से है। उसमें सूरज और किसी और वजह से किसी किस्म की गर्दश के बायस कमी या ज्यादती नहीं होती। वो खुदावन खुदा हर एक को पूरा और उसका बदला किसी किस्म की तरफदारी करके नहीं देता। तो आए हम उस खुदावन को पुकारे जो अपने तालबों को बदला देता है, और जो कोई उस पर तवक्कल करते हैं वो कभी शर्मिंदा ना होंगे। आए हम चंद लम्हों के लिए खुदा के हुजूर झुकें, क्योंकि इब्रानियों के खत में 11वें बाब की 6 आयत में लिखा है, पास हर एक को जो खुदावंद के पास आए ये ईमान रखना चाहिए कि वो अपने तालबों को बदला देता है, और जो कोई उस पर तवक्कल करते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। आए हम सब दुआ करें, सब अपने लबों को खोलेंगे, खुदावंद से उसका जिंदगी बख्श कलाम मांगेंगे जो हमारी रूहानी तरक्की की खुराक है, और उसकी रहनुमाई मांगेंगे। हालेलुया। खुदावंद तेरी तारीफ हो, खुदा बाप तेरे नाम की हम्द हो, खुदा पाक रूह हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे रहनुमाई के लिए, यसु नासरी तेरे कलाम की, तेरी ज़िंदगी के लिए जो हम सब के लिए नमूना और बहुत उम्दा मिसाल है। और खुदाऊँ खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हम सबको अपना बेटा बख्शा और आज का दिन बख्शा। तो आज हम जो कुछ भी तेरे कलाम में से सीखें हम सब के लिए खुदाऊँ खुदा बरकत, हौसला, तसल्ली और रहनुमाई का बायस बने, और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को मिले। उसी के पाक और जलाली नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हम इफिसियों के खत में से सीख रहे हैं कि कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के सबब से गुनाह के जो नाफरमान फर्जंद हैं उनको हलाकत का और नुकसान का फायदा नहीं, उनको नुकसान का सामना होगा। तो मैं चाहता हूं कि आज मेरे साथ निकालें रोमियो 14 बाप। रोमियो 14 बाप, बाइबल मुकद्दस जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूं और तुम्हें आने वाले वक्त के बारे में खबरें देगी, रूहुल कुद्दस तुम्हें आने वाले दौर के बारे में बताएगा कि क्या होने वाला है। वैसे ही जैसे पाक रूह हमें सिखाता है कि खतरों से आगाह करता है, वैसे ही खुदा का कलाम हमें आने वाले दौर के बारे में बयान करता है। और एक दौर आने वाला है जिसमें हर एक घुटना खुदा के आगे झुकेगा, हर एक जुबान खुदावन का इकरार करेगी। सो मेरे साथ देखिए रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 14 बाप उसकी 10वीं आयत से। यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस रसूल कलीसिया को, रोमा की कलीसिया को जो रूम में रहती थी, उनको लिखते हुए कहता है, मगर तू अपने भाई पर किस लिए अल्जाम लगाता है, या तू भी किस लिए अपने भाई को हकीर जानता है। हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के आगे खड़े होंगे। चुनाचे ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा और हर एक जबान खुदा का इकरार करेगी। बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब की तरबियत और नसीहत हो, आमीन। पालूस रसूल यहाँ पर कलीसिया के ईमानदारों को रोमा की कलीसिया में, जैसे आज के दौर में कमज़ोर और मजबूत ईमानदार, रूहानी तौर पर ज़्यादा सरगर्म और रूहानी तौर पर कम सरगर्म ईमानदार, कुछ ईमानदार सिर्फ यीशु मसीह को इस हद तक जानते थे कि वो निजात दहिंदा है, और कुछ इस हद तक जानते थे कि हाँ वो बहुत गहरे तौर पर उसके साथ रिश्ता रखते थे, जैसे उस दौर में था आज भी है। कुछ ईमानदार यीशु मसीह को बादिलो जान मोहब्बत करते हैं, कुछ ईमानदार सिर्फ इस हद तक के कोई दिन त्यौहार आया तो यीशु मसीह को मोहब्बत दिखाई। मिसाल के तौर पर आप सब यहां पर मौजूद हैं, इतनी सर्दी में आपको किसी ने पैसे नहीं दिए। आप किस लिए यहां पर मौजूद हैं? क्योंकि आप खुदा से मोहब्बत यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत से हैं जो सोए हुए हैं, वो अपने दिल में ऐसी ख्वाहिश नहीं रखते। सो पालूस रसूल यहां पर उन तमाम ईमानदारों को आगाह करते हुए कहता है कि कमजोर जब एक दूसरे को कहते थे कि तुमने इस बात में ये नहीं किया, इसलिए तुम्हें मैं कमजोर जानता हूं। कमजोर मजबूत पर, मजबूत कमजोर पर अल्जाम लगाते थे। पालूस रसूल इस नतीजे पर पहुंचता है और कहता है कि हम जो अपने भाई पर अल्जाम लगाते हैं खाने पीने में कि उसने ये खा लिया, उसने ये पहन लिया, उसने ये सवारी की, उसने यहां वहां जो भी किया, एक दूसरे पर अल्जाम लगाते हैं। पालूस रसूल इस नतीजे पर आकर कहता है कि हम जो अपने भाई पर अल्जाम लगाते हैं, एक दूसरे को अपनी अदालत का सामना देते हैं, अब खुद अदालत लगाकर उसको सामना बनाते हैं, उन सबको कहता है हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के आगे खड़े होंगे। हम सब कहां पर होंगे? खुदा के तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे। और ये वो मौका है, ये वो जगह है जहां पर जब कलीसिया जमीन पर से उठा ली जाएगी और खुदावंद यीशु मसीह के सामने, तख्त के सामने खड़े होंगे। और जब वहां पर खड़े होंगे तो क्या लिखा है? खुदावंद खुदा अपने कलाम में फरमाता है, चुनाचे ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है मुझे अपनी हयात की कसम। खुदावंद खुदा जब अपनी हयात की कसम खाता है तो वो ये वादा करता है, वो ये सच बयान करता है। पुराने हदनामों में जब भी कसम खाई जाती थी, मिसाल के तौर पर जब को कसम खाई जाती थी, अगर दो जानवर, एक जानवर को जिबा करके रखा जाता था और उस जानवर के ऊपर ये कसम खाई जाती थी कि मैं ये अहद बांधता हूँ कि मैं खुदावंद का वफादार रहूंगा, और अगर मैं बेवफाई करूँ तो जैसा इस जानवर के साथ हुआ, इसे दो हिस्से किए गए, मेरे भी दो हिस्से हो जाएं। और जब कसम खाई जाती थी, अगर मैं अपने लबों के सुखन से, अपने अल्फाजों से फिरूं, अपने वादे से फिरूं, तो मेरा भी यही अंजाम हो कि मैं अपने लिए अपनी शहादत देता हूं कि अगर मैं तुमसे बेवफाई करूं तो मैं मौत के लायक हूं। सो जब खुदावंद यहां पर कहता है, खुदावंद फरमाता है मुझे अपनी हयात की कसम। हम सब जानते हैं कि खुदा बदल नहीं सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता और ना ही कभी उसने झूठ बोला है। सो खुदा ने जब कहा कि मैं अपनी हयात की कसम खाता हूं कि हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा और हर एक जुबान खुदावन का इकरार करेगी, ये उस दौर का वक्त होगा जब ईमानदारों के अलावा हर एक घुटना, कोई भी मजहब है जिन्होंने यीशु मसीह को जमीन पर कबूल नहीं किया, आसमान पर उसे कबूल करेंगे, लेकिन बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। वो उस दौर में उस तख्त के सामने, खुदा के तख्त के सामने ये कहेंगे कि वाकया ही यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वाकया ही यीशु मसीह नजात है, वाकया ही इसके वसीला से हमें सच और हक का पता चलता है। सो उस दौर में हर एक, हम तो इकरार करेंगे ही कि हाँ तू खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है, हाँ तू ही वो खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले गया, हाँ तू ही है जिसने हमें जिंदगी बख्शी है। सो हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर एक जुबान खुदा का इकरार करेगी, लेकिन बहुत देर हो जाएगी, बहुत से लोगों के लिए बहुत देर हो जाएगी। लेकिन हम ईमानदारों को क्या कहता है पालूस रसूल? बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा, हर एक, आप और मैं अपना हिसाब देंगे। तो आपसे एक सवाल है कि क्या आपने आज से सोचना शुरू किया है जब यीशु मसीह की हजूरी में खड़े होंगे तो वो हमसे पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? क्या सोचना शुरू किया है कि क्या जवाब देंगे जब यीशु मसीह कहेगा कि मुझसे बात करो, मेरे साथ बात करो, मुझे हिसाब दो, तो हम क्या जवाब देंगे? अगर पहले कभी नहीं सोचा तो आज से सोचना शुरू करें कि क्या कहेंगे जब यीशु मसीह कहेगा मेरे बाप के प्यारो आओ। इससे पहले उस बादशाही को लो, उस मेराज को लो, तुमने जमीन पर क्या किया? इस सवाल पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि मैं उसे क्या कहूंगा। कल रात जब मैं मुताला कर रहा था तो एक गहरी सोच में पड़ गया कि खुदावंद यीशु मसीह से मैं क्या कहूंगा जब उसे देखूंगा, उस अनदेखे खुदा को जिस पर मैंने अपनी पूरी हयाती जब से उसके बारे में सुना, यकीन किया, उसके अजीब हाथ को देखा, वो मुझे तरीकी में से, मौत में से, हर तरह के आलम में से बचाता रहा, जब उसे मैं रूबरू देखूंगा तो क्या जवाब दूंगा? अगर नहीं सोचा तो आज से सोचना शुरू करें कि क्या जवाब देंगे। मैं तो यही कहूंगा, खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने आज रूबरू देखा, तेरी तारीफ हो, हालेलुया, तू बादशाहों का बादशाह है, इसके सिवा और मैं और कुछ नहीं सोच सकता तो उसके उससे कहूं। तो आज अपनी जिंदगी में देखें कि हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा, वो हमसे कहेगा क्या जवाब देंगे, वो हमसे बातचीत करेगा। सो ये वो दौर है जिसमें ईमानदारों को हिसाब देना होगा हर अच्छी और बुरी बात का। मेरे साथ एक हवाला देखें, मत्ती की अंजील उसका 12वां बाप, मत्ती की अंजील उसका 12वां बाप। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह बादशाही के बारे में बात कर रहे हैं। जो कोई यीशु मसीह के बारे में कुफर बकेगा उसको तो माफी है, जो कोई रूहुल कुद्दस के खिलाफ बोलेगा उससे माफी नहीं है, ना इस जहां में ना आने वाले आलम में। और ये गुनाह सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? गैर ईमानदार। ईमानदार रूहुल कुद्दस के खिलाफ कुफर नहीं बक सकते। सो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहता है 12वां बाप उसकी 34वीं आयत से, अगर हम पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह उनसे कहता है, ऐ सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो दिल में भरा है वो ही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। 36वीं आयत, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो नकम्मी बातें लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। आज याद कर लें कि जो कुछ हम गालियां, झूठी गवाही, किसी पर लानत करना, किसी को बुरा भला कहना, चुगली, बेऐब जोई, किसी के ऐब निकालना, हर वो नकम्मी बात आप लिस्ट बनाएं, उंगलियों पर गिनना शुरू करें, जो नकम्मी बात हम कहेंगे या कोई भी कहेगा वो क्या होगी? अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। खुदा पूछेगा, जवाब देना होगा। और इस अदालत में क्या लिखा है? क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रासबाज ठहराया जाएगा। अपनी बातों के सबब से रासबाज कहने से मुराद, आपको याद है अय्यूब खुदा की नजर में रासबाज था, लेकिन वो अहले मशरक में गिना जाता था, खुदा का खौफ मानने वाला और बड़ा सादतमंद और बड़ा रहम करने वाला, और वो लोगों के लिए क्या था? बहुत ही हौसला अफजाई देने वाला बंदा, यानी कि वो लोगों को गालियां नहीं बकता था बल्कि खुदा का कलाम बयान करता था। तो आसमान की बादशाही में हम रासबाज यसु पर ईमान लाने से ठहरे हैं हमेशा की जिंदगी के वारिस, बट वहां पर रासबाज ठहरेंगे यानी कि साधक, सादकल कॉल, सच बोलने वाले, सदाकत के फर्जंद। कोई भी हमारे मुंह से नकम्मी बात निकलती है तो उसका हिसाब देना होगा। और जब हम हिसाब देंगे, मेरे साथ देखें दूसरा करंथियों उसका 5 बाप उसकी 9 और 10 आयत, वहां पर जब हिसाब होगा तो क्या होगा। ये भी वो मंजर है जो अदालत का, यीशु मसीह की अदालत, खुदा की अदालत, यीशु मसीह की अदालत, ये एक ही बात है। क्योंकि खुदा अपने कलाम में कहता है यूहन्ना की इंजील में कि सारी अदालत का निजाम मैंने बेटे को दिया है। कोई भी बेफायदा बात, कोई भी नकम्मी बात जो हम करते हैं वो अदालत में लाई जाएगी। ये खुफिया अदालत नहीं होगी कि पादरी साहब को लहदा ले जाकर यार पादरी साहब की शर्मिंदगी ना हो जाए, नहीं, हर एक के सामने अदालत लगी होगी, तमाम फरिश्तगान होंगे और हर एक को खुदावंद यीशु मसीह कहेगा जो उसके काम के मुआफिक बदला होगा, शाबाश मेरे वफादार नौकर। 5 शहरों पर, 2 शहरों पर, 1 शहर पर, और जहां फिर कुछ भी नहीं सवाय हमेशा की जिंदगी के। क्या लिखा है 9वीं आयत में लिखा है, इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हो खा जला वतन, उसको खुश करें। किसको? खुदावंद खुदा को। जमीन पर हैं या आसमान पर हैं, क्या करें? उसको खुश करें। इसीलिए वो कहता है हम हौसला रखते हैं। और 10वीं आयत में क्या लिखा है, क्योंकि मकसद क्या है? क्योंकि ये मकसद है, जब हम जुबान का तर्जमा करते हैं तो इसका मतलब लिखता है क्योंकि ये वजह है। वजह क्या है? जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर सबका हाल जाहर किया जाए, हम सबका हाल जाहर किया जाएगा, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला दे, अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, खा भले खा बुरे, खा भले खा बुरे। ये खा भले और बुरे काम कौन से हैं? सोना चांदी, बेशकीमती पत्थर या फिर घास फूस के हृदय। मेरे साथ देखें 1 करंथियों 3 बाब, ये बुरे और भले काम कौन से हैं जिनका हिसाब हमें देना होगा। वो कौन सी नकम्मी बातें हैं, वो कौन से नकम्मे काम हैं, वो कौन से मुर्दा काम हैं जो खुदा को पसंदीदा ना होंगे। इसलिए जरा गौर करें, पालूस रसूल यहां पर क्रीसिया को ही फिर उसी तलक से बयान कर रहा है कि खुदावन खुदा की हजूरी के सामने क्या होगा। क्या लिखा है 11वीं आयत में, 1 करंथियों 3 बाप उसकी 11वीं है, क्योंकि मकसद क्या है? क्योंकि सिवाय उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। अगर कोई शख्स आकर कोई नई बुनियाद खड़ी करे कि नहीं मसीहत ऐसे है ऐसे है, तो वो झूठा है। पालूस यहां तक कहता है कि अगर आसमान का फरिश्ता भी आकर तुमको कहे कि मसीह की खुशखबरी में थोड़ी सी तब्दीली है, तो वो मालाउन हो। मालाउन का मतलब बड़ी सख्त जबान, वो लानती हो, उस पर खुदा की लानत हो। जो कोई खुदा के कलाम को बदलने की कोशिश करे और मसीह की बुनियाद को बदल कर अपनी बुनियाद शुरू करे। और क्या लिखा है 12वीं आयत में, और अगर कोई उस नींव पर, यीशु मसीह जो बुनियाद है, सोने या चांदी या बेशकीमती पत्थरों, ये वो भले काम है जो रूहुल कुद्दस में किए गए होंगे, जो रूहुल कुद्दस की नाफरमानी में, जिसमें हमारी तवज्जो क्या होगी? खुदा को खुश करना, जिसमें अपना भला नहीं बल्कि खुदावंद की मर्जी और उसके खौफ को जानते हुए दूसरों का भला। वो काम क्या है? सोना चांदी या बेशकीमती पत्थर। ना सोने को जंग लगता है, ना बेशकीमती पत्थर अपनी खासियत और अपनी काबिलियत या उसकी कहते हैं कि कीमत को बदलता है, और ना ही चांदी खराब होती है। लेकिन क्या लिखा है, या लकड़ी या घास या भूसे का रदा, ये सारी चीजें तबाह होने वाली हैं, सड़ जाने वाली हैं, गल जाने वाली हैं, जो इसी तरफ इशारा है, इंसानी इमाल जो खुदा के लोग बहुत दफा, जिनको यीशु मसीह ने कहा फरीसी, दिखावे के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी वाह वाह करवाने के लिए, अपने आप को जलाल देने के लिए। दूसरे लफ्जों में वो तमाम काम जो इंसान करता है कि मेरी बल्ले बल्ले हो, वो लकड़ी घास और भूसे का रदा है। क्या लिखा है 13वीं आयत में? तो उसका काम जाहिर हो जाएगा। किसकी तरफ है? अदालत की तरफ इशारा है, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा, आग के दिन साथ जाहिर क्या होगा? यीशु मसीह अपनी जलाली हालत में जाहिर होगा, वो उसका काम, वो उस काम को बताएगा, और वो खुद और वो आग खुद हर एक का काम आजमाएगी के कैसा है। हम आजमाए जाएंगे, जैसे सोने को पिघलाया जाता है उसकी मैल निकलती है, वैसे ही खुदावंत की तख्ते अदालत के सामने जब हमसे पूछा जाएगा, हमसे हिसाब लिया जाएगा, हमसे कहा जाएगा कि जी किताबें खोली जाएंगी। तो याद रखें, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ईमानदारों को ये नहीं लिखा कि पतरस रसूल दरवाजे पर खड़े हैं और वो वहां पर पूछताछ करेंगे कि आप यीशु पर ईमान लाए, आपने कैसे यीशु को कबूल किया, या ये। नहीं, जो बर्रे के हैं वो पहले ही उठा लिए जाएंगे, और यीशु मसीह के तख्ते अदालत के सामने यीशु मसीह खुद हिसाब करेगा और किताबें खोली जाएंगी, जिनके किताबे हयात में नाम लिखे हुए यानी कि यीशु को कबूल कर चुके हैं वो उसकी हजूरी में होंगे, लेकिन जिनके किताब ना किताबे हयात में नाम नहीं मिलेंगे वो बाहर रहेंगे। इसलिए आजमाया जाएगा, और लिखा है 14वीं है, जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा। क्या पाएगा? अजर पाएगा। अगर नकम्मी बातें हैं, नकम्मे अमाल हैं, मुर्दा काम हैं, वो इंसानी तमाम रसूमात हैं जो खुदा की तरफ से नहीं, वो सब उस लकड़ी घास और भूस के रदे की तरह जलकर सवा हो जाएंगे। और ये हरगिज वो सवा नहीं होगी कि किसी के बाबे की सवा की चूटी से भी किसी को शिफा मिल जाती है, ये ऐसी सवा होगी जो बेकार है, बेकार। और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा। नुकसान क्या? नकम्मी बातों का, नकम्मे अमालों का, चुगली चिकारी, लड़ाई झगड़ा, वो काम जो रूहुल कुद्दस नहीं चाहता, हरामकारी, नशाबाजी, जादूगरी, बुत परस्ती, और तफरके और जुदाइयाँ और बिदतें और गुमराही, वो तमाम जो इंसान इंसानी सोच में करता है वो खुदा की हजूरी में जल कर भस्म हो जाएंगे, लेकिन खुद बच जाएगा मरकर जलते जलते। वहां पर लोग नूर की मानद चमकेंगे, किसी की रोशनी इस बल्ब की मानद, किसी की रोशनी जिस इस अफशां की मानद होगी। इसलिए हिसाब हमको देना होगा। आज से सोचना शुरू करें कि जब यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे तो क्या उसे कहेंगे। मैंने सोचना शुरू किया हुआ है कि जब यीशु मसीह को रूबरू देखूंगा तो उससे क्या कहूंगा। आप भी इस बात पर गौर करें, इस बात पर सोचें, क्योंकि उसकी अदालत के सामने हर एक को जवाब देना होगा, और वहां पर किसी की तरफदारी नहीं होगी कि ये उसका बेटा है या उसकी बेटी है। हर एक को क्या लिखा है? हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। मुझे अपना हिसाब, राजेश को अपना हिसाब, चाचा जी को, चाची जी को अपना हिसाब। आज से सोचना शुरू करें कि मैं यीशु मसीह को क्या कहूंगा। उस नौकर की मानो तो नहीं, हाँ मैं जानता था खुदावंद, मैं जानता था तू बहुत सख्त आदमी है, इसलिए मैं तेरी नेमत को रुमाल में लपेट कर रख लिया ताकि उसे इस्तेमाल ही ना करूं। अपनी नेमत को, अपनी खिदमत को पहचाने ताकि उसकी हजूरी में हमसे कहे शाबाश मेरे वफादार नौकर, मेरे बेटे, मेरी बेटी। सो आज से सोचना शुरू करें, आए हम खुदा के हजूर झुकें।